डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 13, अधिनियम 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन की न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर लेक्चर 13 एक्ट्स की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और शुरुआत करें। हम जो करने की योजना बना रहे हैं वह अधिनियमों की पुस्तक के माध्यम से काम करना आज भी जारी रखना है। हमने अभी इस पर शुरुआत की है, इसलिए हमने पुस्तक की समग्र संरचना और संरचना के संबंध में जो कुछ कहा है उसकी थोड़ी समीक्षा करेंगे, और फिर हम ठीक उसी तरह जैसे हमने गॉस्पेल को भी संभाला था, हम मुख्य विषयों और कुछ मुख्य पाठों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन पर मैं चाहता हूं कि आप पुस्तक में ध्यान दें, और फिर उन मुद्दों में से एक का उदाहरण देखकर समाप्त करें जिनका आम तौर पर हमें सामना करना पड़ता है जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, और हम इस परिच्छेद को एक परीक्षण मामले के रूप में उपयोग करेंगे कि हम पुस्तक की व्याख्या कैसे करते हैं, या कम से कम कुछ प्रश्न जिन्हें हमें उठाने और निपटने की आवश्यकता है। तो आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में और अधिक विस्तार से देखेंगे। पिता, मैं फिर से आपको अपने शब्द को उसकी मूल सेटिंग और संदर्भ के प्रकाश में रोकने और उसका विश्लेषण करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ऐसा करने में भी यह महसूस करते हुए कि प्रासंगिक रूप से स्थित दस्तावेजों का सेट आज भी आपके शब्द के रूप में हमसे बात कर रहा है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इसके प्रति सचेत रहें और हम यह पहचाने कि हम आपके वचन से कमतर किसी चीज के साथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए सारी ऊर्जा और अनुशासन तथा हमारी सारी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसे यथासंभव स्पष्ट और यथासंभव सटीक रूप से समझने की कोशिश करने के लिए पाठ में वह सब लाने की आवश्यकता है। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, पिछली कक्षा अवधि में हमने अधिनियमों को उसकी संरचना और पुराने नियम से संबंध के रूप में देखना शुरू किया। मैंने आपको सुझाव दिया कि अधिनियमों की पुस्तक को समझने के लिए मुख्य पाठ अध्याय 1 श्लोक 8 है, जहां यीशु पुस्तक की शुरुआत में अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे हैं, जिनके बारे में हम मैथ्यू, मार्क में अधिक पढ़ते हैं, ल्यूक और जॉन, जैसा कि यीशु अब अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के बाद अपने अनुयायियों को संबोधित करते हैं, यीशु अब उन्हें याद दिलाते हैं या उन्हें उनके आदेश के साथ छोड़ देते हैं, और वह यह है कि यीशु कहते हैं उसके लिए प्रतीक्षा करें और वह करेगा। पद 8 में जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो वे शक्ति प्राप्त करेंगे और आप यरूशलेम में, पूरे यहूदिया में मेरे गवाह होंगे और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि मैंने सुझाव दिया कि यह मुख्य रूप से मिशनों को कैसे करना है इसकी रणनीति नहीं है, बल्कि यह यशायाह की पुराने नियम की किताब से निकली है। तो वे सभी ग्रंथ ऊपर से उन पर आने वाली शक्ति या पवित्र आत्मा का संदर्भ, गवाह होने का संदर्भ और पृथ्वी के छोर तक जाने का संदर्भ, यह सब सीधे यशायाह की पुस्तक से आता है। यीशु मूल रूप से जो कह रहे हैं वह अब वही है जिसकी यशायाह ने आशा की थी, यशायाह का परमेश्वर के लोगों की बहाली और परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा को पृथ्वी के छोर तक फैलाने का वादा अब यीशु मसीह और उनके अनुयायियों के सामने पूरा हो रहा है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से यशायाह की भविष्यवाणी और पुनर्स्थापना और परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा को पृथ्वी के छोर तक फैलाने के उसके दृष्टिकोण को पूरा करेगा। तो फिर अधिनियम 1:08 फिर से मुख्य रूप से इस बारे में नहीं है कि मिशन कैसे करें, यह मुख्य रूप से इस बारे में है कि यीशु और उनके अनुयायी पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को कैसे पूरा करते हैं, जैसा कि यशायाह की पुस्तक में पाया गया है। तो आप देखेंगे कि आपके नोट्स में एक दूसरा खंड जो संदर्भ मैंने आपको यशाया 32, 43 और 49 में दिया है। दूसरी ओर अध्याय 1 श्लोक 8 भी एक प्रकार की मोटी रूपरेखा प्रदान करता है कि कैसे पुस्तक का बाकी भाग आगे बढ़ेगा और पुनर्स्थापना के लिए यशायाह के दृष्टिकोण को पूरा करने में यह कैसे विकसित होगा। इसलिए उदाहरण के लिए पहला भाग कि आप यरूशलेम में मेरे गवाह होंगे, मूल रूप से पहले 6 अध्यायों या अधिनियमों के अध्याय 6 के शुरुआती भाग से मेल खाता है और फिर तथ्य यह है कि सुसमाचार को यहूदिया और सामरिया में फैलाना है। अधिनियमों के अगले कई अध्यायों में प्रतिबिंबित अधिनियम अध्याय 6 से अध्याय 9 और फिर अध्याय 12 से 28 पृथ्वी के छोर के अनुरूप होंगे, जहां प्रेरित पौल रोम में इस अच्छी खबर का प्रचार करते हुए समाप्त होता है, फिर से यशायाह की पूर्ति में बहाली का वादा। तो इस कारण से अधिनियम 1:08 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसे यशायाह की पुस्तक और पुराने नियम से जोड़ता है। लेकिन इसके बाद बाकी अधिनियम कैसे विकसित होंगे, इसकी एक मोटी रूपरेखा भी प्रदान करता है, संकेंद्रित वृत्तों को व्यापक बनाने में उस क्षेत्र को गले लगाते हुए जो यरूशलेम से कहीं आगे तक जाता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि अधिनियमों की पुस्तक का उद्देश्य मुख्य रूप से यह प्रदर्शित करना है कि कैसे इस सुसमाचार की जड़ें मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, विशेष रूप से ल्यूक में हैं, क्योंकि याद रखें अधिनियम 2 खंडों का हिस्सा है, काम ल्यूक के साथ, लेकिन यह सुसमाचार जो अब यीशु राज्य और पुराने नियम की पूर्ति के संबंध में लाता है। अब अधिनियम दर्शाता है कि सुसमाचार कैसे कम और कम यहूदी क्षेत्रों को गले लगाने के लिए फैलता है, फिर से पुराने नियम की पूर्ति में और विशेष रूप से यशाया की किताब, कैसे सुसमाचार यरूशलेम से आगे बढ़ता है, वहां से कम यहूदी क्षेत्रों को संबोधित करता है और उन्हें गले लगाता है, रोम और पृथ्वी के छोर तक समाप्त होता है। तो हम उस पर वापस आएंगे और पूछेंगे कि जिस तरह से हम एक पल में सुसमाचार को समझते हैं, उसके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अधिनियमों के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में पहचाने। यह बताता है कि यीशु जिस सुसमाचार की घोषणा करते हैं और उसे पूरा करते हैं और सुसमाचार में पूर्णता लाते हैं, वह अब उन स्थानों तक कैसे फैलता है जो कम से कम यहूदी हैं। यह सांस्कृतिक बाधाओं और सीमाओं को पार करना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, संबंध प्रदर्शित करने के लिए एक्ट्स की पहली कविता पर वापस जाएं। हमने कहा कि एक्ट्स और ल्यूक दोनों दोखंड के काम से संबंधित हैं। एक्ट्स और ल्यूक न्यू टेस्टामेंट में शामिल होने से पहले इसमें दोखंड की पुस्तक शामिल होती। ध्यान दें कि अध्याय 1 का पहला पद कैसे शुरू होता है। पहली पुस्तक में थियोफिलस वह व्यक्ति है जिसे ल्यूक अध्याय 1 में संबोधित किया गया है, और इसलिए पहली पुस्तक जिसे अधिनियम 1:01 में संदर्भित किया गया है, वह ल्यूक की पुस्तक का जिक्र कर रही है। तो पहली पुस्तक में वह ल्यूक का सुसमाचार है जिसे हम ल्यूक थियोफिलस कहते हैं। मैंने उन सभी के बारे में लिखा है जो यीशु ने शुरू से लेकर उस दिन तक किया और सिखाया जब तक कि उसे पवित्र के माध्यम से निर्देश देने के बाद स्वर्ग में नहीं ले जाया गया। उन प्रेरितों को आत्मा जिन्हें उसने चुना था। तो अब एक्ट्स उस कहानी की निरंतरता होगी जो ल्यूक के सुसमाचार में शुरू हुई थी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और अधिनियमों में कुछ महत्वपूर्ण पाठ देखें, एक दिलचस्प बात यशायाह की समानता के प्रकाश में, हमने फिर से यशायाह की पुस्तक के बारे में कहा, विशेष रूप से इसके उत्तरार्ध में, लेकिन पूरी पुस्तक एक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, पुनर्स्थापना जो यरूशलेम में मुक्ति से शुरू होती है, अर्थात परमेश्वर की प्रजा इसराइल को यरूशलेम में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाएगा। याद रखें जब यशायाह को लिखा गया था तब परमेश्वर के लोग निर्वासन में थे या अपने पाप और मूर्ति पूजा के कारण निर्वासन में जाने के लिए तैयार थे, और इसलिए यशायाह उस समय की आशा करता है जब परमेश्वर के लोगों को निर्वासन से यरूशलेम में वापस लाया जाएगा और बहाल किया जाएगा, लेकिन यह बस है राज्यों की बहाली की तैयारी। यह भी याद रखें कि इस समय जिस समय यशायाह लिखा गया था, इसराइल दो राज्यों में विभाजित था। क्या आपको प्रोफेसर विल्सन हिल्डेब्रांट या प्रोफेसर फिलिप्स के साथ अपना ओल्ड टेस्टामेंट सर्वेक्षण याद है? विभाजित राज्य इसराइल का राज्य इसराइल और यहूदा में विभाजित हो गया था। तो ऐसा लगता है जैसे यशायाह इसे ऐसे समय के लिए देख रहा है जब दोनों राज्य बहाल हो जाएंगे, परमेश्वर के लोग एक होंगे, यरूशलेम में मुक्ति आएगी, वे गवाह होंगे ताकि मोक्ष अंतः पृथ्वी के छोर तक पहुंचे। फिर हमने यह भी कहा कि अधिनियम इसी योजना का अनुसरण करता है। इसकी शुरुआत यरूशलेम में मुक्ति और पुनर्स्थापित राज्यों से होती है। दिलचस्प बात यह है कि सुसमाचार यरूशलेम से बाहर निकलने के बाद क्या होता है। सबसे पहले स्थानों में से एक जहां प्रेरितों ने जाना शुरू किया वह सामरिया था, जो इसराइल का उत्तरी राज्य था, और इसलिए यह एक कारण है कि एक्स में सामरिया, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया का उल्लेख है, क्योंकि यह यशायाह की बहाली के वादे का हिस्सा था कि जो दो राज्य विभाजित हो गए थे उन्हें भगवान के एक लोगों के रूप में बहाल किया जाएगा और फिर उन्हें उसका गवाह बनना है ताकि मोक्ष अंतः पृथ्वी के छोर तक पहुंचे। प्रेरितों के काम 28 का अंत यीशु के शिष्यों में से एक प्रेरित पॉल के माध्यम से सुसमाचार के रोम जाने के साथ होता है। अब एक दिलचस्प बात इससे हमें मदद मिलती है। मुझे लगता है कि इससे हमें एक दिलचस्प अंश को समझने में मदद मिलती है जो मुझे हमेशा थोड़ा उलझन में डालता है, और वह है प्रेरितों के काम 1:08 के ठीक बाद आप इसे पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, जब मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया से लेकर पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यशायाह की पूर्ति में फिर से आप पर, और फिर प्रेरितों के काम अध्याय 1 इस दिलचस्प कहानी के साथ समाप्त होता है। श्लोक 15 से शुरू होकर मैं अभी भी अध्याय 1 में हूँ, यह किताब की शुरुआत में ही है। उन दिनों में पतरस ने ईसाइयों विश्वासियों के बीच में खड़े होकर कहा, मित्रों, धर्म ग्रंथ का वह वचन पूरा होना चाहिए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के द्वारा यहूदा के विषय में बताया था, जो यीशु को गिरफ्तार करने वालों का मार्गदर्शक बना था। अब यह आपको सुसमाचार की ओर वापस ले जाता है। हर किसी को याद है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने और मौत की सजा दिए जाने से ठीक पहले उनके 12 शिष्यों में से एक यहूदा ने यीशु को धोखा दिया था, और मूल रूप से अब वह उन 12 में से एक नहीं है। तो समस्या यह है कि अब आपके पास 11 शिष्य बचे हैं, और इसलिए अधिनियम अध्याय 1 लोगों द्वारा एक और शिष्य चुनने के साथ समाप्त होता है। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि उन्होंने वास्तव में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मैथियास नाम के एक निश्चित व्यक्ति को मिली और वह शिष्य संख्या 12 था। तो अध्याय 1 का श्लोक 26 समाप्त होता है, और उन्होंने उनके लिए चिट्ठी डाली और चिट्ठी मथायस के नाम पर निकली और उसे 11 प्रेरितों में शामिल कर लिया गया। तो अब आपके पास फिर से 12 हैं। अब उस कहानी का क्या महत्व है? उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, सबसे पहले आप पूछ सकते हैं, ठीक है, 11 पर्याप्त क्यों नहीं है? मेरा मतलब है, निश्चित रूप से, विशेषकर चूंकि यहूदा एक बुरा आदमी था, इसलिए यीशु 11 के साथ अपना उद्देश्य पूरा कर सकता था। एक और की आवश्यकता क्यों थी? ल्यूक को उसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ल्यूक द्वारा इस तथ्य पर जोर देने में क्या हो रहा है कि 12वें प्रेरित को जोड़ा गया था। फिर से यीशु ने गॉस्पेल में 12 प्रेरितों को चुना, उनमें से एक यहूदा ने दलबदल कर लिया। तो आप अधिनियमों की शुरुआत में 11 के साथ समाप्त होते हैं। केवल 11 प्रेरित हैं, और अब एक्ट्स के लेखक एक्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि 12वें प्रेरित को जोड़ा गया था। आपके अनुसार इसका कारण क्या है? यह आदर्श छोटे समूह का आकार है या क्या चल रहा है? फिर 12 की संख्या का क्या महत्व था? यीशु ने सबसे पहले 12 प्रेरितों को क्यों चुना? हाँ, 12 प्रेरित इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। 12 प्रेरितों को इकट्ठा करके यीशु यह कह रहा था कि यह परमेश्वर की नई प्रजा है। ईश्वर के नए लोग अब इसराइल राष्ट्र और 12 जनजातियों के इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं, बल्कि इसराइल सहित ईश्वर के नए लोग अब यीशु और उनके प्रेरितों पर आधारित हैं। इसीलिए वह 12 को चुनता है, यह दिखाने के लिए कि यह परमेश्वर की नई प्रजा है जो इसराइल के लिए परमेश्वर के सच्चे इरादे को पूरा करेगी। तो फिर प्रेरितों के काम में आपके पास 12वां प्रेरित क्यों है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वास्तव में पॉल को ऐसा लगता है। हम बाद में देखेंगे, पॉल सोचता है कि वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह सोचता है कि वह 12 में से एक अतिरिक्त है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मत्थायस एक मूल था, मूल 12 प्रेरितों में से एक था, उसे होना ही चाहिए था। हाँ, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हाँ, यह एक अच्छी बात है। यह कोई गलती नहीं है कि ओह, हमें गलत आदमी मिल गया, चलो फिर से कोशिश करें, और फिर उन्हें पॉल मिल गया। पॉल स्वयं अपने पत्रों में सोचता है कि वह 12 में से एक है, इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह वैध है और ऐसा होना ही चाहिए था। लेकिन ध्यान दें, यशायाह की बहाली के वादे का वह हिस्सा भगवान के लोगों की बहाली है। इसलिए 12वें प्रेरित को चुनकर ऐसा लगता है जैसे अधिनियमों का लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि अब इसराइल को बहाल किया जा रहा है। 12वें प्रेरित को चुनकर परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। और याद रखें, प्रेरित इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए एक्ट्स के लेखक के लिए इस कहानी को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि फिर से वह उस भविष्यवाणी को प्रदर्शित कर रहा है जो यशायाह ने की थी, राष्ट्रों द्वारा पूर्ति हो रही है, इसराइल राष्ट्र को चुनाव के माध्यम से बहाल किया जा रहा है। 12वां प्रेरित। आठ 12 तो होने ही थे, क्योंकि 12 प्रेरित इसराइल के 12 गोत्रों के अनुरूप थे। तो फिर अधिनियमों में जो चल रहा है वह वादा कह रहा है, यशायाह की बहाली का वादा जो इसराइल की जनजातियों को बहाल करने के साथ शुरू होता है अब पूरा हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय इसराइल के माध्यम से नहीं, बल्कि अब भगवान के इस नए लोगों के माध्यम से जो 12 पर स्थापित नहीं है, पुनर्स्थापित जनजातियां, लेकिन यीशु मसीह के 12 प्रेरित। तो आप देखिए, भगवान के एक नए लोग बन रहे हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हैं। ईश्वर के एक नए लोग का गठन किया जा रहा है जो यहूदी पहचान या कानून का पालन करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से यीशु मसीह के व्यक्तित्व में विश्वास पर निर्भर करता है। और फिर से एक्ट्स का लेखक दर्शाता है कि चर्च द्वारा 12वें प्रेरित को चुनना। तो अब 12 जनजातियां यशायाह से पुनर्स्थापित राज्य अब 12वें प्रेरित द्वारा चुने जा रहे हैं, फिर से भगवान के इस नए लोगों की नींव के रूप में जो अब उस उद्देश्य को पूरा करेगा जो भगवान ने अपने लोगों इसराइल के लिए चाहा था। लेकिन फिर ईश्वर के लोगों में इसराइल शामिल है, लेकिन इसराइल तक ही सीमित नहीं है, इसमें गैर यहूदी भी शामिल हैं, क्योंकि अब परिभाषित करने वाला कारक राष्ट्रीय पहचान या कानून का पालन करना नहीं रह गया है। परिभाषित करने वाला कारक यीशु मसीह में विश्वास है। और यदि ऐसा मामला है तो अन्य जातियों के साथ साथ यहूदी भी परमेश्वर के इस नए लोगों का हिस्सा हो सकते हैं जिसकी स्थापना 12 प्रेरितों पर हुई है, न कि इसराइल के 12 गोत्रों पर। ठीक है, बस कुछ प्रमुख पाठ। मैं उनमें से केवल 3 पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, हालांकि हम कुछ अन्य तत्वों पर भी गौर करेंगे जो अधिनियमों के लिए अद्वितीय हैं। लेकिन पहला अधिनियम अधिनियम अध्याय 2 है, जो यरूशलेम में एकत्रित परमेश्वर के लोगों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को दर्ज करता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि यह घटना स्पष्ट रूप से फिर से पुराने नियम से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, यह चाहे कितना भी अप्रत्याशित क्यों न हो, कोई अनोखी अभूतपूर्व घटना नहीं थी। पुराने नियम में इसकी आशा की गई थी, क्योंकि जब पतरस को खड़ा होना पड़ा और जो कुछ हो रहा था उसका बचाव करना पड़ा, तो यह कहता है कि कुछ दर्शकों ने सोचा कि वे नशे में थे क्योंकि लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे और अब वे अन्य भाषाओं में बोल रहे थे, और दर्शकों ने सोचा कि वे नशे में थे। इसलिए पीटर को उठना होगा और समझाना होगा कि क्या हो रहा है, और वह इसे पुराने नियम से जोड़कर समझाता है। भविष्यवक्ताओं में से एक जोएल प्रदर्शित करता है कि जो हो रहा है वह पुराने नियम की भविष्यवाणी और प्रत्याशित से कुछ भी कम नहीं है। अर्थात फिर से पुराने नियम ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि यशायाह की पुस्तक और यहेजकेल, यिर्मयाह और अधिकांश अन्य भविष्यवक्ताओं ने किया था, कि एक दिन परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा और अपनी आत्मा को उंडेलेगा और उनके साथ एक नई वाचा स्थापित करेगा। अब पीटर और एक्ट्स के लेखक यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह यरूशलेम में यीशु के अनुयायियों पर पवित्र आत्मा उंडेले जाने के साथ हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों पर पवित्र आत्मा के आने का विचार कोई अनोखी चर्च चीज नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ चर्च से संबंधित है या एक्ट्स का लेखक उसके लिए नया है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से पुराने नियम में जो अनुमान लगाया गया था उसकी पूर्ति है। तो यह प्रेरितों के काम 2 में परमेश्वर के लोगों पर उंडेला जा रहा पवित्र आत्मा बस नई वाचा की पूर्ति का हिस्सा है। याद रखें, भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसे दिन की भविष्यवाणी की थी जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बांधेगा। पुरानी वाचा विफल हो गई क्योंकि इसराइल ने अवज्ञा की और उसका पालन नहीं किया। इसलिए परमेश्वर एक नई वाचा स्थापित करेगा, और उस नई वाचा का एक हिस्सा यह होगा कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। यह अब प्रेरितों के काम अध्याय 2 में होता है। इसलिए प्रेरितों के काम 2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि यह न केवल यीशु के वादे की पूर्ति है। अध्याय 1 श्लोक 8 में याद रखें, क्या वे ऊपर से पवित्र आत्मा या शक्ति प्राप्त करेंगे जब वे आत्मा प्राप्त करते हैं? तो यह न केवल यीशु के शब्दों की पूर्ति है, बल्कि यह पुराने नियम की भी पूर्ति है। तो इस वजह से अधिनियम 2 बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुनर्स्थापना और मुक्ति की शुरुआत है, जिसका वादा पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण पाठ अधिनियम अध्याय 10 है, और हम कई अध्यायों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिनियम अध्याय 10 यह है। मैं कहानी पढ़ना शुरू करूंगा, मैं पूरी बात नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यह एक शतपति की कहानी है जो एक रोमी सैनिक था और इस कारण यहूदी नहीं अन्य जाति था, और उसका नाम कुर्नेलियुस था। और इसलिए यह कहता है, कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक आदमी था जो इतालवी दल का एक सूबेदार था, जैसा कि इसे कहा जाता था। वह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था जो ईश्वर से डरता था। पहली शताब्दी में यहूदियों और अन्य जातियों के साथ लोगों की एक श्रेणी थी जिन्हें ईश्वर भयभीत कहा जाता था, और इसलिए यहाँ उन भगवान से डरने वालों में से एक है। वह एक भक्त व्यक्ति था जो अपने सारे घराने सहित परमेश्वर का भय मानता था। उन्होंने लोगों को उदारतापूर्वक भिक्षा दी और लगातार भगवान से प्रार्थना की। एक दिन दोपहर को लगभग 3 बजे उसे एक दर्शन हुआ, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक दूत अंदर आकर उससे कह रहा है, हे कुर्नेलियुस। उसने भयभीत होकर उसकी ओर देखा और कहा, यह क्या है प्रभु? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। अब लोगों को याफा में भेजो कि शमौन जो पतरस कहलाता है, वह शमौन पतरस चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ रहता है और उसका घर समुद्र के किनारे पर है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तब उसने अपने दो दासों को और अपने सेवकों में से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उनको सब हाल बताकर याफा को भेज दिया। तो पीटर को यही होना चाहिए। अगले दिन दोपहर के समय जब वे यात्रा पर थे और नगर के निकट आ रहे थे, पतरस प्रार्थना करने के लिए अपने घर की छत पर गया। उसे भूख लगी और उसने कुछ खाने को चाहा, और जब उसका भोजन तैयार किया जा रहा था तो वह अचेत हो गया। अब मैं इसका क्या मतलब निकालता हूँ? प्रांस शायद एक दूरदर्शी प्रकार का अनुभव है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के लेखक के पास था। प्रकाशित वाक्य का लेखक आत्मा में है और वास्तव में स्वर्ग पर चढ़ता है और इस दर्शन को देखता है। जाहिर है हम रहस्योद्घाटन के बारे में अधिक बात करेंगे, लेकिन यह उस प्रकार का ट्रांस है जो यहाँ चल रहा है। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक बड़ी चादर की तरह कुछ चारों कोनों से जमीन पर गिर रहा था। इस चादर में सभी प्रकार के चार पैर वाले जीव, सरीसृप और आकाश के पक्षी थे। तब उसने यह शब्द सुना, हे पतरस, उठ, इन्हें मारकर खा। परंतु पतरस ने कहा, हे प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र व अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। आवाज ने उससे दूसरी बार फिर कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अपवित्र या अशुद्ध न करना। ऐसा तीन बार हुआ और फिर वह चीज अचानक स्वर्ग तक पहुंच गई। अब यहाँ क्या हो रहा है? पतरस ने जो दर्शन देखा वह उस शीट का है जिसमें ये सभी जानवर हैं जिन्हें पुराने नियम के कानून के अनुसार अशुद्ध घोषित किया गया था। और अब एक दर्शन में पीटर इसे देखता है और स्वर्ग से एक आवाज सुनता है, शायद भगवान की या एक दिव्य आवाज, यह कहते हुए कि अब ये जानवर जिन्हें पुराने नियम के कानून के तहत अशुद्ध घोषित किया गया था, अब साफ हैं। यानी आप इन्हें खाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? फिर आपके सामने दो अलग अलग चीजें चल रही हैं। एक ओर आपके पास कुर्नेलियुस है जो एक अन्य जाति सूबेदार है और वह लोगों को याफा में भेजता है जहां पतरस है। और फिर आपके पास पीटर के इस दर्शन और इन जानवरों के दर्शन के बारे में यह कहानी है कि पुराने नियम के कानून मोजेक वाचा के तहत अशुद्ध घोषित किया गया था और अब उन्हें शुद्ध घोषित किया गया है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यह वास्तव में, आप जानते हैं, पीटर की भूख को संतुष्ट करने के बारे में है? ये दोनों कहानियां कैसे जुड़ती हैं? फिर से इस गैर यहूदी सूबेदार की कहानी और फिर यीशु के प्रेरितों में से एक पीटर की कहानी, जिसके पास भोजन के बारे में यह दृष्टि है कि अब भगवान शुद्ध घोषित करते हैं। हाँ, ठीक है, तो यह हाँ, आप अन्य जातियों का उल्लेख करने में सही हैं, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वह केवल जानवरों पर ही नहीं बल्कि अन्य जातियों पर भी एक घोषणा है। तो पीटर को दिखाया जा रहा है कि कानून, पुराने नियम का कानून जिसने आपको गैर यहूदी में प्रतिष्ठित किया, वह अब वह भूमिका नहीं निभा सकता। अब सुसमाचार अन्य जातियों के साथ साथ यहूदियों तक भी जा सकता है। तो इस दर्शन के द्वारा यह कहते हुए कि अब सभी भोजन स्वच्छ हैं, यह ऐसा है जैसे कि भगवान भी कह रहे हैं कि अब अन्य जाति भी स्वच्छ हैं और उन्हें अब भगवान के लोगों के बराबर सदस्यों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह पीटर को दिखाकर प्रदर्शित किया गया है कि पुराने नियम का कानून अब यहूदी और गैर यहूदी के बीच विभाजन नहीं करता है। एक अर्थ में इसे रद्द कर दिया गया है और इसे मसीह में पूर्णता के लिए लाया गया है। फिर से आप इसके बारे में सोचते हैं, खाद्य कानून पुराने नियम में खाद्य कानून जो यहूदियों को कुछ प्रकार के भोजन या कुछ प्रकार के मांस खाने से रोकते थे, उनमें से एक कार्य यह था कि यह यहूदियों को अलग करने के लिए एक पहचान चिन्ह के रूप में कार्य करता था। अन्य राष्ट्रों के यहूदी। इसके अलावा इसके बारे में सोचें, प्रारंभिक चर्च जहां यहूदी और गैर यहूदी के बीच का अंतर अक्सर सबसे अधिक स्पष्ट हो जाता था। फिर से इसके बारे में सोचें, चर्च यरूशलेम से यहूदिया सामरिया और तक फैलना शुरू करने जा रहा है। पृथ्वी के छोर। दूसरे शब्दों में चर्च तेजी से गैर यहूदी बनना शुरू करने जा रहा है। अब जैसा कि चर्च ऐसा करता है, उन स्थानों और समयों में से एक जहां यहूदी और अन्य जातियों के बीच अंतर सबसे तीव्र होगा वह है जब उन्होंने बैठकर भोजन किया, क्योंकि यहूदियों को कुछ प्रकार के भोजन खाने से मना किया गया होगा और मांस पुराने नियम के कानून के अनुसार जहां अन्य जातियों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं था। तो फिर यह दर्शन जो कर रहा है वह पत्रस को प्रदर्शित कर रहा है कि अब मसीह के आगमन के साथ और ये सभी घटनाएं जो पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ हुई हैं और मसीह के आगमन के साथ अब अन्य जातियों को शुद्ध घोषित किया गया है और अब अन्य जाति भी यहूदियों के समान स्तर पर परमेश्वर के लोग बन सकते हैं और इसलिए खाद्य कानून अब लागू नहीं होते हैं, वे अब यहूदी और गैर यहूदी के बीच ये भेद नहीं करते हैं। और पीटर बेझिझक खाना खा सकता है, वह उनके साथ बैठकर खा सकता है, वह उनका स्वागत कर सकता है, वह उन्हें उपदेश दे सकता है और परमेश्वर के सच्चे लोगों के रूप में उनका स्वागत कर सकता है। इसलिए अध्याय 10 प्रेरितों के काम की पुस्तक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर से अधिनियमों का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि सुसमाचार कैसे शुरू होता है, कि शुरुआत में ईश्वर एक संकीर्ण यहूदी दायरे में फैलना शुरू कर देता है और कम यहूदी विरासत वाले लोगों को गले लगाता है, यानी जब तक यह नहीं हो जाता तब तक अधिक गैर यहूदी पृथ्वी के छोर तक। जैसे ही ऐसा होगा आपको फिर से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उस प्रश्न को याद रखें जो अधिकांश यहूदी पूछ रहे थे, ईश्वर के सच्चे लोग कौन हैं? परमेश्वर के लोग होने का क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि मैं एक यहूदी के रूप में जीवन जीता हूँ, मैं मूसा के कानून को अपनाता हूँ, पुरुषों के लिए जिसका मतलब खतना करना था, हर किसी के लिए जिसका मतलब भोजन कानूनों का पालन करना, सब्बात का पालन करना आदि था। और इसलिए सवाल यह है कि चर्च अधिकाधिक गैर यहूदी होता जा रहा है, यानी जो लोग कानून का पालन नहीं करते उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? क्या उन्हें परमेश्वर के लोग बनने के लिए कानून का पालन करना चाहिए? और इसलिए यह दर्शन लोगों के लिए पत्रस के लिए एक अनुस्मारक है, नहीं, कानून अब यह परिभाषित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है कि परमेश्वर के लोग कौन हैं। प्रसिद्ध यहूदी पहचान चिन्ह जैसे खतना, कुछ मांस खाना और सब्बात का पालन करना अब यह परिभाषित करने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं कि भगवान के लोग कौन हैं। और पत्रस के इस दर्शन का यही उद्देश्य है। सभी खाद्य पदार्थों को स्वच्छ घोषित करने में कानून अब यह निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है कि भगवान के लोग कौन हैं। लेकिन अब अन्य जाति भी स्वच्छ हैं और उन्हें परमेश्वर के सच्चे लोगों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अधिनियमों में अगला महत्वपूर्ण पाठ प्रसिद्ध जेरूसलम परिषद है। वास्तव में यह सबसे अधिक में से एक हो सकता है, यह अधिनियमों की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप यह तारीख जाने, ईस्वी सन 70, मुझे खेद है मैंने वहां गलत तारीख लिख दी है, वो तो कुछ और ही था। आपको 70 ई को जानने की आवश्यकता है क्योंकि तभी मंदिर नष्ट हो गया था। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे वह वहां कैसे मिला, लेकिन फिर भी जेरूसलम परिषद इसे अधिनियम अध्याय 15 के साथ जोड़ने में सक्षम है। अब जेरूसलम काउंसिल के बारे में फिर से जो महत्वपूर्ण है वह यह प्रश्न है कि ईश्वर के सच्चे लोग बनने के लिए क्या आवश्यक है। परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं? क्या मूसा की व्यवस्था का पालन करना और एक यहूदी के रूप में जीवन जीना परमेश्वर के लोग बनने के लिए आवश्यक है? और फिर विशेष रूप से पुरुषों के लिए इसका मतलब उस वाचा के संकेत के रूप में खतना होता जो भगवान ने इब्राहिम और मूसा को दिया था, जो कि भगवान की वाचा के लोगों से संबंधित होने का संकेत था। तो यह मुद्दा है कि फिर से वही मुद्दा जिसे अध्याय 10 में संबोधित किया जा रहा था, लेकिन अब यह एक तरह से सिर पर आ गया है ताकि प्रारंभिक चर्च पहली परिषद बुलाए जहां वे इस पर चर्चा करने जा रहे हैं और समझो निर्णय दो। अर्थात परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं? परमेश्वर के लोगों से संबंधित होने के लिए क्या आवश्यक है? और समस्या यह है कि जब आप अधिनियम अध्याय 15 पढ़ना शुरू करते हैं तो यह इस प्रकार शुरू होता है। तब कुछ लोग यहूदिया से आए और दूसरे ईसाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि जब तक तुम मूसा की रीति के अनुसार खतना न करोगे तब तक तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो यह एक तरह का मुद्दा था, खतना है। और फिर मुद्दा सिर्फ पुरुषों के खतने का नहीं था, वह बस एक संकेत था कि आपने संपूर्ण मोज़ेक कानून को अपनाया है और आप मूसा के कानून का पालन करने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या परमेश्वर के लोगों से संबंधित होने और बचाए जाने के लिए मूसा के कानून का पालन करना आवश्यक है? जब पौलुस और बरनबास का उनके साथ कोई छोटा मोटा मतभेद और वाद विवाद नहीं हुआ तो पौलुस और बरनबास और कुछ अन्य लोगों को प्रेरितों और पुरनियों के साथ इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यरूशलेम जाने के लिए नियुक्त किया गया। इसलिए वे चर्च के द्वारा अपने रास्ते पर चले गए, मुझे खेद है, और उन्हें चर्च द्वारा उनके रास्ते पर भेजा गया था। और जब वे फेनिशिया और सामरिया दोनों से गुजरे तो उन्होंने अन्य जातियों के रूपांतरण की सूचना दी और सभी को बहुत खुशी दी विश्वासियों। जब वे यरूशलेम आए तो कलीसिया और प्रेरितों और पुरनियों ने उनका स्वागत किया और जो कुछ परमेश्वर ने उनके साथ किया था उसका वर्णन किया। परंतु कुछ विश्वासी जो फरीसियों के पंथ के थे खड़े होकर कहने लगे, मूसा की व्यवस्था के मानने के लिए उनका खतना होना आवश्यक है। इसलिए फिर से वे सभी अन्य जातियों जैसे कि कुर्नेलियुस के मसीह के पास आने और सुसमाचार का जवाब देने, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन से, और उस सुसमाचार का जवाब देने की खबरें सुनते हैं जो प्रेरित प्रचार कर रहे थे। और फरीसी कह रहे थे, ठीक है, यह पर्याप्त नहीं है। पुराने नियम के कानून के अनुसार उन्हें भी मूसा के कानून के प्रति समर्पण करना होगा। फिर खतने से गुजरने वाले पुरुषों के लिए, हर किसी के लिए, सब्बात, भोजन कानून और अन्य कानूनों ने स्पष्ट रूप से एक को भगवान के लोगों से संबंधित यहूदी के रूप में चिह्नित किया। और इसी कारण से यरूशलेम की परिषद, जिसे यरूशलेम की परिषद कहा जाता है, एक साथ मिलती है और मूल रूप से इस पर निर्णय देती है। हालांकि अगले दिन फिर से चर्च नहीं उठा और सब कुछ ठीक था। इस पर काम करने में अभी भी थोड़ा समय लगा। और बाद में गलातियों की पुस्तक में, जो गलातियों को लिखे गए पॉल के पत्रों में से एक है, हम यह भी देखेंगे कि पत्रस ने हर समय ऐसा नहीं किया, यहां तक कि पत्रस ने जेरूसलम परिषद के निर्णय के साथ असंगत कार्य भी किया। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या लोगों को, विशेष रूप से अन्य जातियों को, परमेश्वर के लोग बनने के लिए, बचाए जाने के लिए मूसा के कानून के प्रति समर्पण करना चाहिए, सर्वसम्मत उत्तर था, नहीं, वे ऐसा नहीं करते हैं। यीशु मसीह में विश्वास एक व्यक्ति को परमेश्वर के लोगों का सच्चा सदस्य बनाने और उस व्यक्ति को बचाने के लिए पर्याप्त था। तो यह जेरूसलम काउंसिल का निष्कर्ष था। फिर अगली सुबह चर्च नहीं उठा और सब कुछ ठीक था और सभी ने इसे अपनाया और तब से सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। फिर अभी भी विरोध, गलतफहमी और कुछ बहस हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि जेरूसलम काउंसिल के फैसले ने जीत हासिल की, और इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में लेखक इसका वर्णन करने में काफी समय व्यतीत करता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह संभवतः प्रेरितों के काम की पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, तो इसका परिणाम यह होना चाहिए कि यह घटना जो प्रेरितों के काम दो में घटी, आत्मा के उंडेले जाने के साथ बाद के स्थानों अन्य जातियों के क्षेत्र में घटित होने लगी, और इसलिए निष्कर्ष इसका परिणाम होना चाहिए, खैर वे वास्तविक अनुभव थे, अर्थात गैर यहूदियों का स्वागत और स्वागत किया जाना चाहिए और उन्हें परमेश्वर के सच्चे लोगों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही वे मूसा के कानून के प्रति समर्पित न हो, जैसे कि खतना होना, भोजन कानूनों का पालन करना आदि। हाँ, यह वास्तव में एक अच्छा सवाल है। मैं पास नहीं होना चाहता, मैं उस प्रश्न को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम गलाटियंस में पहुंचते हैं तो उसी मुद्दे के कारण मैं उस बारे में बात करने में अधिक समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन यह बहुत अच्छा सवाल है। क्या कानून के कुछ हिस्से हैं? मेरा मतलब है, क्या यीशु का इरादा पूरे कानून को किनारे रख देने का था? क्या इसके कुछ अंश ऐसे थे जिनका लोग अब भी पालन करते थे? कुछ ईसाइयों ने नैतिक और औपचारिक कानून के बीच अंतर किया है। वह कानून जो औपचारिक था, बलिदान और खतना, भोजन कानून आदि से संबंधित था, अलग कर दिया गया। हत्या न करना, हत्या न करना आदि जैसे नैतिक नियम आज भी बाध्यकारी हैं। जब हम गलातियों की पुस्तक पर आते हैं तो मैं उस मुद्दे पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह परमेश्वर के लोगों के जीवन में कानून की भूमिका के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात करता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। मैथ्यू पर वापस जाने के लिए भी याद रखें, अगर आपको याद है जब हमने पहाड़ी उपदेश के बारे में बात की थी, मैथ्यू 5 में पहाड़ी उपदेश यीशु के कथन से शुरू होता है। वह कहते हैं, मैं कानून को खत्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। और यीशु का क्या मतलब था? याद रखें कि वह इसे पूरी तरह से पालन करने के लिए आया था, हालांकि मैं सहमत हूं कि उसने ऐसा किया था, लेकिन यीशु मूल रूप से कह रहा है कि मैं वही हूं जो कानून ने बताया था। कानून वास्तव में मेरा जीवन, मंत्रालय और शिक्षण ही इंगित करता है। और इससे एक सवाल उठता है कि फिर से मुझे लगता है कि गलाटियन भी उत्तर देने में मदद करेंगे, जिसने शायद बहुत से यहूदियों को भी परेशान किया है। खैर, यदि अन्य जातियों को मूसा के कानून के प्रति समर्पण नहीं करना है तो उनका नैतिक मार्गदर्शन क्या है, या आज्ञाकारिता का मानक क्या है यदि उनके पास मार्गदर्शन के लिए मूसा की व्यवस्था नहीं है? और गलातियों की पुस्तक इसका उत्तर भी देगी। इसलिए मैं यह प्रश्न अवश्य उठाना चाहता हूं कि क्या हमें कानून के किस भाग, पुराने नियम के कानून यदि कोई है, का पालन करना चाहिए? क्या इसमें से कोई ऐसा है जो अभी भी लागू है या बाध्यकारी है, या क्या इसके कुछ भाग अभी भी बाध्यकारी हैं और अन्य भाग नहीं हैं? और यदि हाँ तो हम इसका निर्णय कैसे करेंगे? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं बहस करने जा रहा हूं कि पॉल के अनुसार मुझे लगता है कि संपूर्ण मोज़ेक कानून अब ईसाइयों पर बाध्यकारी नहीं है। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन वह यह भी स्पष्ट है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहें वह कर सकते हैं और हम किसी भी आदेश के अधीन नहीं हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई नैतिक मार्गदर्शन नहीं है, और पॉल उस मुद्दे को संबोधित करेंगे। कुआं, बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, ये तीन मुख्य हैं। मैं अधिनियमों के बारे में कुछ अन्य अनूठी चीजों को देखना चाहता हूं, लेकिन इनमें से किसी भी पाठ पर कोई प्रश्न है? दूसरी बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जो होता है वह वास्तव में होता है, यानी पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, लोगों का विभिन्न भाषाओं में बोलना वगैरह यह पूरे काम के दौरान कई बार दोहराया जाता है। फिर से जैसे कि लेखक कहना चाहता है कि यरूशलेम में यीशु के प्रेरितों और अन्य अनुयायियों के साथ जो हुआ वह अब दोहराया जाता है, लेकिन जैसे जैसे सुसमाचार यहूदी क्षेत्र से बाहर कम और कम यहूदी क्षेत्रों में अधिक गैर यहूदी क्षेत्रों में फैलता है। इसलिए प्रेरितों के काम दो में यहूदियों के साथ जो हुआ वह प्रेरितों के काम की पूरी किताब में अन्य जातियों के साथ कई बार दोहराया गया है। अक्सर आपके मन में यह विचार होता है कि एकमात्र निष्कर्ष यह है कि अन्य जातियों को भगवान के सच्चे लोग होना चाहिए क्योंकि उनके साथ वही हो रहा है जो अधिनियम दो में यीशु के प्रेरितों और तत्काल अनुयायियों के साथ हुआ था। तो अन्य जातियों को भी परमेश्वर के लोग होना चाहिए क्योंकि उनके साथ भी यही हो रहा है। ठीक है, प्रेरितों के काम की पुस्तक की दो विशेषताएं जिन पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वे हैं जिन्हें अक्सर मिशनरी यात्राएं या पॉल की यात्राएं कहा जाता है जो प्रेरितों के काम की पुस्तक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करती हैं, और मैं आपसे इस पूरे मानचित्र की प्रतिलिपि बनाने की उम्मीद करता हूं। नहीं, मैं नहीं करता, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। मैं आपको बस यह दिखाना चाहता हूं, मैं सिर्फ यह प्रदर्शित करना चाहता हूं कि एक्ट्स की पुस्तक, यहां तक कि पॉल की मिशनरी यात्राएं, एक्ट्स की इस तरह की संकेंद्रित संरचना में कैसे फिट बैठती हैं। तो यहां आपके पास यरूशलेम है, एक तरह से शुरुआती बिंदु, और यह लाल बिंदीदार रेखा जिसे आप बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, पॉल की पहली मिशनरी यात्रा है, और आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में व्यापक नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से गैर यहूदी क्षेत्र में जाती है। तो यहाँ फिलिस्तीन और यरूशलेम की भूमि है, और इसलिए पॉल की पहली मिशनरी यात्रा उसे अन्य जातियों के क्षेत्र में ले जाती है। यह बैंगनी रेखा पॉल की दूसरी मिशनरी यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अधिनियमों में उनमें से तीन हैं। दूसरी मिशनरी यात्रा, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे ग्रीस में ले जाती है और यहां तक कि यरूशलेम से भी दूर ले जाती है, और फिर इस तरह की हरियाली में तीसरी मिशनरी यात्रा इस हरी रेखा के साथ उसे कुछ समान क्षेत्रों में भी ले जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह अधिनियमों के पैटर्न पर फिट बैठता है जहां सुसमाचार अब यरूशलेम से परे उन लोगों को गले लगाने के लिए फैल रहा है जो बिल्कुल भी यहूदी नहीं हैं। और फिर अंत में यह नारंगी रेखा रोम में पॉल के साथ समाप्त होती है जहां अधिनियमों की पुस्तक समाप्त होती है, और इसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ है कि एक्ट्स का अंत रोम में पॉल के साथ क्यों होता है। शायद इसलिए क्योंकि अधिनियमों को बस इतना ही करना है। इसे बस यह दिखाने की जरूरत है कि पॉल यह प्रदर्शित करने के लिए रोम गया था कि यशायाह की पूर्ति कि सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचेगा पॉल के रोम पहुंचने के साथ हुआ है। अब जब ऐसा होता है तो एक्स अपनी कहानी वहीं समाप्त कर देता है। तो यह आपको पॉल की यात्राओं की सीमा और प्रेरितों के काम की पुस्तक का अधिकांश भाग दिखाता है। मुझे लगता है कि अधिनियमों की अधिकांश पुस्तक में अध्याय 9 पॉल के रूपांतरण की शुरुआत करता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अधिकांश भाग पॉल और उसकी यात्राओं पर केंद्रित है। मैं उनके बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। नंबर एक यह है कि एक अर्थ में ये संभवतः लेबल वाली यात्राएं नहीं हैं जो पूरी तरह से सटीक नहीं हैं क्योंकि तस्वीर इतनी नहीं है कि पॉल बस एक यात्रा कर रहा है और वह घर वापस आ गया है, हालांकि यह इसका हिस्सा है। लेकिन जब आप अधिनियमों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने वास्तव में इनमें से कई शहरों में 1.5 या 2 साल तक निवास किया था। तो वह वास्तव में एक घर खरीदेगा और निवास करेगा, यहां तक कि एक व्यवसाय भी स्थापित करेगा और इनमें से कुछ शहरों में कुछ समय के लिए रहेगा। अन्य समय में वह जिन अन्य शहरों में था वे बहुत छोटे थे, पॉल के एक पत्र के संबंध में हम जिन शहरों के बारे में बाद में बात करेंगे उनमें से एक यह है कि उसे भीड़ द्वारा बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वे उससे परेशान थे। लेकिन मूल रूप से पॉल का दर्शन इन शहरों में से एक में जाने का था और वह एक नए समुदाय, एक चर्च की स्थापना के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक रहेगा और फिर वह दूसरे शहर में चला जाएगा। इसलिए संभवतः वे सर्वोत्तम लेबल वाली यात्राएं नहीं हैं, लेकिन संभवतः इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम उसी का उपयोग करेंगे। इन यात्राओं के बारे में ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि इन यात्राओं में पॉल जिन शहरों का दौरा करता है उनमें से अधिकांश वे शहर हैं जिनके लिए पॉल पत्र लिखेगा जो हमें नए नियम के बाकी हिस्सों में मिलते हैं। जैसा कि हमने कहा, अधिनियमों की पुस्तक सुसमाचार और शेष नए नियम के बीच एक अद्भुत पुल प्रदान करती है। इसलिए हमने पॉल को इफिसुस जैसे शहरों का दौरा कराया है और हमने उसे कोरिंथ जैसे शहरों और कई अन्य शहरों का दौरा किया है। थिस्सलुनीके में पॉल ने उन शहरों का दौरा किया जिनका उल्लेख बाद में न्यू टेस्टामेंट में पॉल के पत्रों में किया गया। तो फिर अधिनियम कुछ मामलों में शेष नए नियम का परिचय प्रदान करता है। जैसा कि हमने कहा, यह पीटर की तरह अन्य प्रमुख विशेषताओं का भी परिचय देता है। हमारे पास पीटर के पत्र हैं, इसलिए अन्य प्रमुख आंकड़े आपको नए नियम के बाकी हिस्सों में भी मिलते हैं। एक अन्य मुख्य विषय अधिनियमों में पवित्र आत्मा की भूमिका है। ल्यूक की तरह हमने कहा कि ल्यूक में प्रमुख विषयों में से एक पवित्र आत्मा था और इसे अधिनियमों में भी उठाया जाता है। अब अधिनियमों को छोड़कर पहचानने योग्य दो चीजें हैं। सबसे पहले प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम की किताब में कई घटनाओं को आयोजित करने, व्यवस्था करने और लोगों को कुछ स्थानों पर लाने में भूमिका निभाता है। इसलिए पुस्तक में जो कुछ चल रहा है उसमें पवित्र आत्मा बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है, इस हद तक कि कुछ लोग सुझाव देते हैं कि पुस्तक के लिए बेहतर शब्द प्रेरितों के कार्य नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के कार्य हैं। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन दूसरा, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, संपूर्ण अधिनियमों में पवित्र आत्मा का उल्लेख हमेशा नई वाचा पवित्र आत्मा की उपस्थिति के रूप में समझा जाना चाहिए जिसका वादा पुराने नियम में किया गया था। तो याद रखें, अधिनियमों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति कोई नई या ईसाई चीज नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह कुछ है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जिसका वादा किया गया था और आने वाले नए के संबंध में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। यह वाचा कि ईश्वर एक दिन अपने लोगों के साथ बहाल करेगा या उसे लागू करेगा। अब अधिनियमों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ नई वाचा पहले ही पूरी हो चुकी है। अधिनियमों के बारे में एक और बात कहनी है, वह यह कि अधिनियम हम इसे कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में कई प्रश्न उठाते हैं। यही इसका महत्व है। तो प्रेरितों के काम की पुस्तक के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या है और हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए और विशेष रूप से हम इसे कैसे लागू करते हैं? और मेरे मन में यह है कि जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हम इन अंशों के साथ क्या करते हैं जो चमत्कारी संकेतों और चमत्कारों को चित्रित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 2 में ऐसा लगता है जैसे उपस्थित सभी लोग अन्य भाषा में बोलते हैं। और सवाल यह है कि जब आप अधिनियमों को पढ़ते हैं और इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए और इसे कैसे लागू करना चाहिए? क्या हमें इन्हें मानक के रूप में लेना चाहिए आज के हमारे अनुभव के लिए या किसी और तरीके से? और एक उदाहरण के रूप में, इसके एक उदाहरण के रूप में मैं प्रेरितों के काम अध्याय 8 को पढ़ना चाहता हूँ। और फिर जैसे कि सुसमाचार यरूशलेम से बाहर फैलना शुरू हो रहा है, अध्याय 8 में यहाँ हमने जो पढ़ा है, अब जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरिया, तो यहाँ सामरिया में सुसमाचार जा रहा है। जब यरूशलेम के प्रेरितों ने सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब इसे ध्यान में रखें, यह दिलचस्प है कि उन्होंने पीटर और जॉन को क्यों चुना। वे दोनों नीचे गए और उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि सामरियों ने, जिन्होंने सुसमाचार स्वीकार कर लिया था, प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करें, क्योंकि अभी तक आत्मा उनमें से किसी पर नहीं आया था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा मिला। और मैं वहीं रुकूंगा। कहानी में और भी बहुत कुछ है और अध्याय 8 में कुछ अन्य दिलचस्प चीजें भी चल रही हैं, लेकिन मैं वहीं रुकना चाहता हूं। इसलिए फिर से, जैसे सुसमाचार पूरे अधिनियमों में फैलता है, उदाहरण के लिए अधिनियम अध्याय 2 से शुरू करते हुए आप पाते हैं कि पवित्र आत्मा उंडेला गया है और लोग एक प्रदर्शन के रूप में अन्य भाषाओं में बोलते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। एक प्रदर्शन के रूप में पुराने नियम की पूर्ति की नई वाचा का उद्धार अब उनके पास आ गया है और आत्मा अब उंडेल दिया गया है और वे अन्य भाषाएं बोलते हैं। और कभी कभी ये सभी दिलचस्प बातें, ये संकेत और चमत्कार घटित होते हैं। और फिर सवाल यह उठता है कि हमें इससे क्या मतलब है। मेरा मतलब है, जब हम प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हैं, तो क्या हमें इसे इस तरह से पढ़ना चाहिए कि हम इसे एक मानक अनुभव का वर्णन करते हुए देखें, ताकि हमें यह उम्मीद करते हुए प्रेरितों के काम की किताब पढ़नी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है और ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले मुझे इस वाक्यांश, संकेतों और चमत्कारों के बारे में कुछ कहना चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, संकेत और चमत्कार जैसे जीभ और उपचार और चमत्कारी घटनाएं पवित्र आत्मा की उपस्थिति और इस नई वाचा के उद्धार की गवाही देने के लिए कार्य करती प्रतीत होती हैं। इसलिए जब लोग सुसमाचार पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो पवित्र आत्मा उन पर उंडेला जाता है और जैसे जैसे यह विभिन्न क्षेत्रों में फैलता है, कम से कम यहूदी ये संकेत और चमत्कार उसके साथ होते हैं, शायद एक प्रदर्शन के रूप में कि वही बात जो प्रेरितों के काम 2 में हुई थी यहूदियों के साथ, अब अन्य जातियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए ये संकेत और चमत्कार सुसमाचार के प्रसार के साथ साथ उन क्षेत्रों में फैलते हैं जहां यह नहीं था। यह प्रदर्शित किया गया है, सुसमाचार और पवित्र आत्मा की उपस्थिति इन संकेतों और चमत्कारों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि मैं इस बात से भी आश्वस्त हूं कि संकेत और चमत्कार शायद फिर से पुराने नियम में वापस चले जाते हैं। यह जंगल में भटक रहे इसराइलियों और चिन्हों और चमत्कारों, चमत्कारी चीजों जैसे लाल सागर को पार करना और मन्ना का चमत्कारी प्रावधान आदि आदि को याद करता है। जब परमेश्वर के लोग जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो ये सभी चीजें उनके साथ थीं। इसलिए मैं यह भी सोचता हूं कि संकेतों और चमत्कारों की पृष्ठभूमि भी पुराने नियम की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संकेत और चमत्कार हैं। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम इन घटनाओं का इलाज कैसे करेंगे। पुनः अधिनियम उदाहरणों से भरा हुआ है, जैसा कि हम अधिनियम अध्याय 8 में पाते हैं। समस्या यह है कि जब आप अधिनियमों को पढ़ते हैं, तो हर समय एकरूपता प्रतीत नहीं होती है। कभी कभी लोग सुसमाचार पर प्रतिक्रिया करते समय तुरंत पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी यह अन्य भाषाओं में बोलने और अन्य चमत्कारी संकेतों के साथ होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में लोग सुसमाचार पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होता है। तो समस्या यह है कि संपूर्ण अधिनियमों में बहुत अधिक एकरूपता नहीं दिखती है। दूसरे शब्दों में, यह हर समय एक ही तरह से नहीं होता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें? क्या अधिनियम मानकात्मक या वर्णनात्मक है? अर्थात क्या अधिनियम एक ऐसा पैटर्न स्थापित कर रहा है जो सच होना चाहिए या जो हमेशा होता है? वह मानक होगा। क्या अधिनियम इस आदर्श का वर्णन कर रहा है कि जब भी सुसमाचार फैलता है या कोई यीशु मसीह के प्रति विश्वास में प्रतिक्रिया करता है तो ऐसा होना ही चाहिए? या यह वर्णनात्मक है? क्या एक्ट्स की दिलचस्पी यह कहने में नहीं है कि ऐसा ही होना था, बल्कि सिर्फ यह कहने में है कि ऐसा ही हुआ था? यह बस वर्णन करता है कि कैसे सुसमाचार कम से कम यहूदी क्षेत्रों में फैल गया, और बस यही हुआ। यह हमें उस तरह का कोई मॉडल या पैटर्न देने की कोशिश नहीं कर रहा है जैसा उसे होना चाहिए। मेरी राय में मुझे आश्चर्य है कि क्या उत्तर का हिस्सा दोनों नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मुझे बाढ़ के पार जाना पसंद है, इसलिए मुझे कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यह वैध है, और यहां एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में, मुझे लगता है कि अधिनियमों की पुस्तक ईश्वर के लोगों से यह अपेक्षा करती है कि वे ईश्वर से चमत्कारी तरीकों से काम करने की अपेक्षा करें, क्योंकि उसका सुसमाचार विभिन्न लोगों तक फैलता है। फिर भी अधिनियम हमें यह आवश्यक रूप से नहीं बताता कि वह कैसा दिखना चाहिए, और मुझे लगता है कि अधिनियमों को पढ़ने से यह स्वाभाविक है। फिर तथ्य यह है कि यह हर बार एक ही तरह से नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक मुख्य रूप से यहाँ यह वर्णन कर रहा है कि कैसे सुसमाचार कम और कम यहूदी क्षेत्रों में फैल गया, और इसलिए मानक हिस्सा यह है। मुझे लगता है कि हाँ, भगवान चमत्कारी तरीकों से काम करता है और कर सकता है जो उसके सुसमाचार के प्रसार के साथ होता है, लेकिन वर्णनात्मक हिस्सा यह है कि अधिनियम हमें यह नहीं बता रहा है कि उसे कैसा दिखना है या वह कैसा है हर बार होना। इसीलिए फिर से, कभी कभी जब लोग सुसमाचार पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वे अन्य भाषा में बोलते हैं, और अन्य बार वे नहीं बोलते हैं। प्रेरितों के काम 8 में लोग सुसमाचार पर प्रतिक्रिया देते हैं फिर भी उन्हें तुरंत आत्मा प्राप्त नहीं होती है, जबकि अन्य स्थानों पर लोगों को तुरंत आत्मा प्राप्त होती है। कभी कभी वे उन पर हाथ डालते हैं, कभी कभी नहीं। तो फिर अधिनियम उस अर्थ में वर्णनात्मक है। यह हमें ठीक ठीक यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जब नई वाचा का मोक्ष विभिन्न लोगों द्वारा अपनाए जाने के लिए फैल रहा है तो परमेश्वर की आत्मा को कैसे कार्य करना और आगे बढ़ना है। अब इसके आलोक में आइए अधिनियमों को फिर से देखें। हम क्या समझा सकते हैं? जैसा कि हम अधिनियमों को पढ़ते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? दूसरे शब्दों में, फिर से अधिनियम 2 की तुलना में आदेश अद्वितीय है। लोगों ने सुसमाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, फिर भी उन्हें आत्मा नहीं मिली है। और पतरस और यूहन्ना को लोगों के पास जाना था और उन पर हाथ रखना था ताकि वे आत्मा प्राप्त करें। अब फिर से, यदि यह हमें कोई मानक नहीं दे रहा है और कह रहा है कि ऐसा ही होना है, क्योंकि फिर से कुछ अन्य पाठ पढ़े। कभी कभी आत्मा लोगों पर तब आती है जब उनके हाथ उन पर नहीं रखे जाते। कभी कभी वे अन्य भाषाओं में बोलते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि वे अन्य भाषाओं में बोलते हैं। लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि इस पाठ में क्या चल रहा है? आप दो बातें क्यों सोचते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि प्रेरितों के काम 8 में आत्मा इन ईसाइयों पर तब तक नहीं आई जब तक कि दो प्रेरित वहां नहीं पहुंचे? और आप क्यों सोचते हैं कि यह पतरस और यूहन्ना थे और उन्हें उन पर हाथ रखना पड़ा? दूसरे शब्दों में, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ जैसा कि यहां अधिनियम 8 में हुआ था? ठीक है, यह बहुत दिलचस्प है। तो यहां दो प्रेरित किसी ऐसी चीज को छू रहे हैं जो पहले अशुद्ध थी, अर्थात सामरी। उसे मत चूको। वे सामरिया को जाते हैं। वे सामरिया जाते हैं सामरियों के पास जिन्होंने संभवतः सुसमाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और अब वे उन्हें शारीरिक रूप से छूते हैं और उन पर हाथ रखते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि अब वे ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक रूप से छू रहे हैं जिन्हें अधिकांश यहूदियों द्वारा अशुद्ध माना गया होगा, क्योंकि फिर हमने यहूदियों और सामरियों के बीच संबंध अच्छे नहीं होने के बारे में बात की। ल्यूक के सुसमाचार के अनुसार वे सामाजिक बहिष्कृत होते। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि आत्मा के आने में तब तक देरी हुई जब तक पतरस और यूहन्ना वहां नहीं पहुंचे और उन पर हाथ नहीं रख सके? इसके बारे में सोचो, ये सामरी हैं। उन्हें तब तक तुरंत आत्मा क्यों नहीं मिली जब तक कि पीटर और जॉन दो सबसे महत्वपूर्ण को याद नहीं आया कि पीटर ने गॉस्पेल और अब एक्ट्स में क्या भूमिका निभाई है? वह प्रवक्ता है जो एक्ट्स दो में उठे और समझाया कि क्या हो रहा था। क्यों याद रखें ये सामरी हैं? इन्हें तब तक पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलती जब तक यरूशलेम के सबसे प्रसिद्ध प्रेरितों में से दो पीटर और जॉन वहां नहीं पहुंचते और उन पर अपना हाथ नहीं रखते? मेरा मतलब है, तो क्या फिर इस दृष्टिकोण से यह कैसे महत्वपूर्ण है कि ये सामरी हैं? तथ्य यह है कि वे सामरी हैं, यह क्यों आवश्यक था? यदि सामरियों को विश्वास करते ही पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता तो क्या होता? और फिर यह बात फैल गई, हे सामरियों, इन सामरियों को भी पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। अधिकांश लोगों, अधिकांश यहूदी ईसाइयों की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? हाँ, बिल्कुल नहीं, यह वैध नहीं है, ये घिनौने सामरी लोग हैं। इसलिए जब तक पतरस और यूहन्ना वहां नहीं पहुंच सके और उन पर हाथ नहीं रख सके, आत्मा के आने में देरी करके अब निर्विवाद प्रमाण है। कोई भी पतरस और यूहन्ना से बहस नहीं कर सकता जिन्होंने उन पर हाथ रखा और यह देखा कि सामरियों को भी पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। तो फिर से आप अलग अलग चीजें घटित होते हुए देखते हैं, क्योंकि सुसमाचार नस्लीय और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करना और कम यहूदी क्षेत्रों में फैलना शुरू कर देता है। इस मामले में पीटर और जॉन के वहां पहुंचने तक पवित्र आत्मा को रोकना आवश्यक था ताकि कोई विवाद न हो कि ये घृणित सामरी भी वास्तव में भगवान के लोग थे और उन्होंने यहूदियों की तरह ही पवित्र आत्मा प्राप्त की थी। ईसाइयों ने प्रेरितों के काम अध्याय दो में किया। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन की न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर लेक्चर 13 एक्ट्स की पुस्तक है।